आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रातकालीन चैतन्य व्याख्यान माला सत्र में, जिसका अंतिम माला या पुष्प आज समर्पित किया जाएगा। नाम संकीर्तन या हरि नाम या ध्यान पूर्वक हरि नाम जब, यह विषय है। हरि नाम धन तो है, गोलोकेर प्रेम धन। हरि नाम संकीर्तन ऐसी ख्याति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हरिर नामैव केवलम, बस ये सत्य है, सत्य है। फिर कुछ लोग लाख बातें कुछ कह सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्यमेव जयते। हरिर नामैव केवलम ये सत्य है। तो ये सब हरि नाम का महात्म्य तो हम इस व्याख्यान माला में भी सुने हैं और भी हम खूब सुनते पढ़ते हैं। हरि नाम का महात्म्य, महान है हरि नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है सर, हरि से बड़ा हरि का नाम। एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा, ऐसा एक प्रचार है प्रभु। एक आप तो सच हो और फिर आपका नाम सच है, आप सत्य हो और आपका नाम भी सत्य है। सत्य है मतलब शाश्वत है, बस है, सत्य है, अस्ति है, सत्य है। फिर उसमें भी सत्य में भी क्या सापेक्ष कहते हैं, द रिलेटिव ट्रुथ, कोई जानता है? सापेक्ष सत्य, सत्य के भी दो प्रकार है। उसे शरीर भी है, लेकिन आज है तो कल नहीं है। तो अब तो सत्य है, शरीर है, या ये ब्रह्मांड भी है, लेकिन कब तक है, कब तक रहेगा? तो इसको सापेक्ष सत्य कहते हैं। सत्य तो है, जो भी पढ़ाई लिखाई होती है स्कूल और कॉलेजेस में, वो भी सत्य है, किंतु वह कुछ क्षणों तक वह सत्य है, कुछ क्षण तक या कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों, सप्ताह और वर्षों तक, और फिर फिनिश्ड, वो सत्य नहीं रहता। तो सापेक्ष सत्य कहते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव, परिवर्तनशील। सत्य तो है लेकिन परिवर्तन होता है। हम कुमार थे, कौमारम यवनम जरा, और कौन हो? आए मैं तो बालक हूं। कुछ साल बीत गए, अब कौन हो तुम? मैं तो युवक हूं, वही व्यक्ति कहता है। तो बालक है ये भी सत्य था उस समय, लेकिन और अब क्या, मैं युवक हूं, ये भी सत्य है। तो वो पहले का सत्य का क्या हुआ? तो ये सापेक्ष सत्य है, था और अब भी जो है वो, अब कौन हो? मैं वृद्ध हूं, वृद्धाश्रम में अभी मैं भर्ती हो गया हूं। तो वृद्धावस्था तो सत्य है, लेकिन पहले तुम कुमार भी थे और अब युवक भी थे, वो भी सत्य था उस समय, लेकिन अब वो सत्य नहीं रहा, अब कोई परिस्थिति में परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार के परिवर्तन, अशाश्वतम जो ये जगत है, तो इसमें ये परिवर्तन आते रहते हैं, सत्य में परिवर्तन आते हैं। मैं कौन हो तुम? मैं बड़ा धनी हूं। और कौन हो तुम? मैं तो कंगाल हूं, अभी मेरा दिवाला निकल गया। तो एक ही व्यक्ति एक समय क्या है, धनी है, और दूसरे ही दिन या अगले साल हो सकता है दिवाला निकल गया और निर्धन हो गया। तो ये सापेक्ष सत्य है। इसके ऊपर या इसके अलावा और एक सत्य है, वो सदा के लिए सत्य ही रहता है। आज सत्य है, कल था और कल भी रहेगा, अगले साल, अगले वर्ष, अगले जन्म में भी, और इस ब्रह्मांड के नहीं होने के उपरांत भी सत्य रहेगा, शाश्वत सत्य, सत्य त्रि सत्य क्या त्रिकाल सत्य क्या, वो जो देवता प्रार्थना कर रहे थे भगवान के प्राकट्य के समय, तो क्या एक ऐसा एक अच्छा कुछ शब्द का प्रयोग किया है आप, त्रि सत्यम, ये सत्यम वो सत्यम, ऐसे सूची है एक, ये सत्यम वो सत्य, उसमें मतलब सब समय आप पहले थे, आप वो भविष्य में भी सत्य रहोगे। तो इसको अब्सोल्यूट ट्रुथ, अब्सोल्यूट अब्सोल्यूट रिलेटिव ट्रुथ, अब्सोल्यूट ट्रुथ एक बस सत्य है, और सत्य सदा के लिए रहेगा। त्रिकालाबाधी तो भी है, त्रिकालबाधी त्रिकालों के त्रिकाल कालों से काल का प्रभाव नहीं होता सत्य पर। तो शरीर के संबंधित जो है प्रापंचिक, ये सापेक्ष सत्य है, और आत्मा, हम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये सत्य कैसा है, शाश्वत। आज मैं आत्मा हूँ, कल नहीं रहूंगा आत्मा, ऐसे तो बात नहीं है। हम दर्शन, जब दर्शन कर रहा था गौर निताय के, तो मैं सोच रहा था कि कितने सुंदर है निताय, गौर सुंदर, लेकिन ऐसा विचार आया कि किंतु जब मैं नहीं रहूंगा तो ये दर्शन नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट विचार ये आया कि शरीर रहे या नहीं रहे, इसका दर्शन करने वाला तो आत्मा है, वो तो रहेगा, तो अगले जन्म में भी मैं दर्शन कर पाऊंगा। एक के बाद एक ऐसे विचार आ रहे थे, अरे इतने सुंदर भगवान तो है, लेकिन जब शरीर नहीं होगा तो ये दर्शन नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम रहोगे और दर्शन भी करोगे। तो वाह, तो यह तो शरीर का रहना नहीं रहना, ये सापेक्ष सत्य है, और आत्मा तो, आत्मा को तो रहना ही रहना है, ये दूसरा सत्य है, शाश्वत सत्य है, अपरिवर्तनशील, अव्ययी, अक्षयी, अक्षर, अक्षरी, अक्षर है आत्मा, भगवान परमात्मा भी, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान का नाम ही भगवान है, या भगवान, और थोड़ा अतिशयोक्ति करके, अतिशयोक्ति करके फिर हरि से बड़ा हरि का नाम, ऐसी बात तो नहीं है, ये तो ऐसे कहने की गाने की बात है। हरि से बड़ा हरि नाम नहीं हो सकता, क्योंकि हरि नाम ही हरि है, तो हरि ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, तो उतने बड़े हरि भी हो गए। आपने कहा कि हरि से बड़ा हरि का नाम, नाम को बड़ा कर दिया तो हरि कुछ छोटे रह गए क्या, उतने जितने पहले थे वे भी बड़े हो गए। तो वाह, दोनों में कंपटीशन हो सकती है, बड़ा हरि का नाम तो हरि, हरि भी कैसे बड़े हरि, बड़ा नाम, बड़े हरि, बड़ा नाम, बड़े, बड़ा नाम, बड़े हरि। तो वाह, क्योंकि हरि और हरि नाम में अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, ये सिद्धांत है, अभिन्नत्वात्, अभिन्न है, भिन्न नहीं है नाम और नामी, नाम और नामी, काम और कामी होता है, काम और कामी, नाम और नामी, नामी मतलब व्यक्ति होता है, काम तो एक क्रिया या कुछ विचार या भाव हो गए काम, इन कामी, कामी क्या हुआ, कामी व्यक्ति हुआ, जो काम से भरा हुआ है वो कामी, प्रेमी भी होता है प्रेमी, जो प्रेम से भरा है वो प्रेमी, दुख से भरा है वो दुखी, तो नाम से जो भरा है वो नामी, तो नामी कौन है, नामी कौन है, कृष्ण नामी है, कृष्ण उनका नाम है, कृष्णा जिनका नाम है उनका नाम कृष्ण है, तो ऐसे ऐसे नाम वाले नामी जो है, नामी जिनका नाम कृष्ण है वो नामी है, जो धन धन जिनका है वो धनी है। तो ये हम समझ सकते अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो ये तो ज्ञान हुआ, ये नाम ही नामी है। ये ज्ञान ज्ञानी सब कुछ नहीं है, ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान तो शुरुआत है, ज्ञान साधन भी हो सकता है, तो विज्ञान ये साध्य है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये नाम ही नामी है, ये ज्ञान हुआ। तो इसका साक्षात्कार, इसका जब भी अनुभव हो सकता है, फिर हम इस संसार के नहीं रहेंगे, फिर बाय ये जगत को, फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जीवन मुक्त समुच्चते, व्यक्ति बनेगा कैसा, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब जीवित होते हुए भी वो मुक्त है, है इस जगत में है या शरीर में है, लेकिन है नहीं इस जगत में। पहुंचा हुआ महात्मा, पहुंचा हुआ महात्मा, पहुंचे हुए मतलब उनका एक कदम तो उन्होंने वैकुंठ में रखा हुआ। जब भी इस शरीर से छुट्टी होगी तो थोड़ी सी छलांग मार दी तो बढ़ गए आ गए। तो वह तो ये साक्षात्कार, ये अनुभव, भगवान का नाम ही भगवान है। क्योंकि सभी साधनों में, भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में, उपायों में, मार्गों में, विधियों में, ये हरि नाम विधि इस कली काल का जो भी परिस्थिति है, जो गुणों का प्रभाव प्रधानता है, तमगुण रजगुण इत्यादि, और हम अल्पायुषी है, मंद भाग्यायु उपद्रुतः, सभी उपद्रव में फंसे रहते हैं, इन सारे बातों का विचार करके भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान की व्यवस्था है। यानी कुछ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने विचार विमर्श किया, ऑल इन फेवर ऑफ हरि नाम, तो हाथ कई सारे या यूनानिमस सभी ने हाथ, यस पास हो गया, ठहराव पास हुआ। ऐसा नहीं है, ये हरि नाम कुछ लोगों ने, इसमें भगवान भगवान का ये हरिर नामानुकीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी भी कहे हरिर नामानुकीर्तनम इस कलयुग के लिए। तो सभी शास्त्रों का, आचार्यों का, साधु शास्त्र आचार्य, इन सभी ने स्वीकार की हुई है इस बात, ये बात हरिर नाम एव केवलम, ये सिद्धांत हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते आए हैं। और इस हरि नाम पर स्टैंप ऑफ अप्रूवल किसने दिया, किसका हुआ फाइनली, चैतन्य महाप्रभु का। हमने कहा हरि नाम का तो महात्म्य, साधु शास्त्र आचार्य कहे हैं, लिखे हैं, किंतु जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही आए, प्रभु ही आए और उन्होंने कीर्तन किया, तो केवल भाषण ही नहीं, कीर्तन किया, तो ये सबसे ऊंचा महात्म्य हरि नाम का हुआ। तो यही विधि है। तो कैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कहना तो आसान है, हमारे पास मुख भी है, हवा भी है, शरीर में कुछ शक्ति है तो हाथ भी उठा सकते हैं। ये कुछ क्रियाएं हैं, शरीर के संबंधित क्रियाएं हैं। कायेन मनसा वाचा, तो वाचा भी हम लोग कहते हैं, मुख से कहते भी है, ये वाचा हुई, और हाथ और नृत्य करते हैं या बाहु तुले हाथ उठाते हैं। तो इतना कार्य तो आसान, रिलेटिवली आसान कहा जा सकता है, किंतु कठिन कार्य तो मन के स्तर पर है। मन काय न मनसा वाचा, तो हरि नाम संकीर्तन करते हैं या जप करते हैं तो शरीर का भी उपयोग है, वाचा का, काया का, वाचा का उपयोग है, मन का उपयोग है, बुद्धि से भी काम लेना होगा जप करते समय, क्योंकि मन का धर्म है चंचल होना, ये मन का स्वभाव है। चंचलम ही मनः कृष्णा, अर्जुन ने कहा। तो क्या केवल अर्जुन का ही मन चंचल था? क्या बात, नहीं, हर व्यक्ति का, संसार के हर व्यक्ति का मन चंचल है। जो चंचल नहीं है वो मन ही नहीं है। तो चंचलम ही मनः कृष्णा, तो वाह, और भगवान ने भी स्वीकार है, ये ठीक कह रहे हो, मन चंचल है, मैं स्वीकार करता हूं, भगवान गीता के छठवें अध्याय में कहते हैं, किंतु ऐसे मन का अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते, ऐसे चंचल मन को अभ्यास न, अभ्यास के साथ इसको नियंत्रण इस पर किया जा सकता है और इस चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है, इतना स्थिर कि पुनः भगवान गीता में ही कहते हैं निवातस्थ। ऐसी कक्षा है जब योगी ध्यान करते हैं तो उनका मन कैसा रहता है? उज्ज्वला स्थिर रहती है। कैसी स्थिर? उस ऐसे कक्ष की ज्वाला या ज्योति जिस कक्ष में, कमरे में कोई निवातस्थ, निवात कोई वायु नहीं है, वायु जब खिड़की सब बंद है, दरवाजे बंद है और वहां दिया जल रहा है तो कैसा जलता है? स्थिर रहती है उसकी, उसकी शिखा, दीपशिखा, दीपशिखा और दीपक की शिखा ज्वाला स्थिर रहती है। दरवाजे खिड़कियां खोलने से या हवा के चलने से भी पुनः क्या होता है, और यहां तक कि हवा अधिक चलेगी तो वो ज्योति बुझ भी सकती है। तो योगियों के लिए अगर ध्यान करना है, योगी को तो ध्यान, ध्यानावस्थित तदगते न मनसा, मन कहा पश्यन्ति यम योगिनः, योगी ध्यान अवस्था में मन का उपयोग करते हुए ध्यान करते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा जब हम सुनते पढ़ते हैं योगियों के संबंध की, तो हम भक्ति योगी मंडली जो है, हम समझे वो योगियों के लिए है, हमसे कुछ लेना देना नहीं है इस चर्चा के साथ, या वो तो योगियों के लिए है, ऐसी भी बात नहीं है। उसमें उसके कई सारे एलिमेंट्स, कई सारी विधि हमको भी अप्लाई करते हैं। तो मन तो जप करने के लिए बैठे हैं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, ये समय कुछ निष्क्रिय होने का नहीं है, और सबसे अधिक सक्रिय हम हो सकते हैं तो वो जप के समय, मोस्ट एक्टिव होना होगा जप के समय, इसमें शरीर का उपयोग है, वाचा का उपयोग है, मन का उपयोग है और बुद्धि का उपयोग है, और फिर आगे भावों का उपयोग है, भाव जो उत्पन्न होंगे। तो जप करते समय मन के चंचल स्वभाव के कारण, अपने पूर्व संस्कारों के कारण, या जिस स्थिति में, परिस्थिति में हम बैठ के जप कर रहे हैं, ये सब के प्रभावों के कारण हमारा मन और कई दौड़ने की निश्चित ही संभावना है। तो ध्यान पूर्वक जब हम लोग 10 नाम अपराध कहते हैं, उस एंगल से हम सोच सकते हैं, सोचना चाहिए ध्यान पूर्वक जब करना है और फिर अंत में हमें जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी मिलके कहते हैं ना आप लोग, 10 नाम अपराध होने के बाद कृष्ण प्रेम जीवन का, क्या कैसे कहते हैं आप लोग, लास्ट 10 अपराध होने के बाद ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है, और अपने आप को वैष्णव कहलाने वाले को इन 10 अपराधों से बचना चाहिए ताकि जीवन का अभीष्ट सिद्धि जो क्या है, कृष्ण प्रेम है। सभी कहते एक आवाज में कहते कृष्ण प्रेम है, तो वो कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, उसके प्राप्ति के लिए ये 10 अपराधों से बचना चाहिए, और ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी अपराध है। और भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते कि ये जो 10 नाम अपराध है, ये 10 नाम अपराध का स्रोत वैसे ध्यान पूर्वक जप नहीं करने से 10 नाम अपराध ही होते हैं, तो 10 नाम अपराध को टालना है, टालते टालते ही फिर ध्यान पूर्वक जप होना प्रारंभ होगा, और जैसे ध्यान पूर्वक जप होना प्रारंभ होगा तो उसी के साथ फिर 10 अपराध भी आपसे कम होंगे। तो जप करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है, बस योगी भी ध्यान करता है, योगी के ध्यान का लक्ष्य टारगेट कुछ भिन्न हो सकता है, वो परमात्मा का ध्यान करते हैं या कोई निर्गुण निराकार अद्वैतवादी होगा, ब्रह्मवादी, तो वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने का प्रयास करेंगे, योगी परमात्मा का ध्यान। और भक्त को भी ध्यान करना है, ये नहीं कि हमको ध्यान नहीं करना है, और कृते ध्यायतो विष्णुम, सत्ययुग भगवान की प्राप्ति किसे होती थी, ध्यान से होती थी, और फिर सत्ययुग में अभी हम कलयुग में ध्यान नहीं करना है, ऐसी बात तो नहीं है ना, नहीं कलयुग में भगवान का ध्यान नहीं करना, ओ ध्यान मत करो, तो क्या करना क्या है फिर, अगर ध्यान ही नहीं करना तो फिर क्या क्या करना है, किस लिए करना है जो भी हम करते हैं, अगर ध्यान नहीं करना है तो ध्यान तो सभी का लक्ष्य होता है, सतयुग है या त्रेतायुग द्वापर या कली है, ध्यान तो सभी का लक्ष्य है, जो विधि है जो ध्यान में मदद करती है वो अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है, ध्यान तो करना ही है, ओख पूजा तो होती थी, द्वापारी द्वापारे परिचर्याया, नहीं पूजा नहीं, पूजा अर्चना नहीं इस युग में, नहीं पूजा अर्चना भी करनी है लेकिन उसकी विधि है, ये हरि नाम ही अर्चना है, हरि नाम ही पूजा है, हरि नाम ही ध्यान है, और हरि नाम ही यज्ञ है, चार युग हो गए ना, तो हरि नाम का ध्यान मंत्र मेडिटेशन, हरि नाम का यज्ञ, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, और ध्यान ये हरि नाम ही वर्शिप है, अर्चना है, और हरि नाम तो कलयुग में हरि है ही, या हरि तो ध्यान तो टाल नहीं, ध्यान तो करना ही भगवान का, तो ध्यान करना है, ध्यान करते हुए नहीं, मेडिटेशन की उस विधि से नहीं, ध्यान हम करेंगे जब जब का फल क्या हो, ध्यान हो, जब करते करते हमें किसका ध्यान, भगवान का ध्यान, नहीं तो वो जब बेकार है जिसमें ध्यान नहीं है, वो कैसा जप है, या किस लिए जप हम करें अगर ध्यान नहीं करना है, तो पुनः भगवान से ये सब सीखना है। तो योगियों के लिए जो कई सारी बातें कहे हैं, यहां तक कि उसको कैसे बैठना चाहिए, आना कैसे बैठना चाहिए, तो वैसा बैठने से रीढ़ की हड्डी, गर्दन सिर सीधा हो, तो फिर पुनः वो तो योगियों के लिए है, लेकिन दैट्स द बेस्ट पॉस्चर, सबसे अधिक ध्यान करना है, जब भी करना, जब करते वक्त ध्यान करना है, तो जब का भी लक्ष्य है ध्यान या स्मरण या दर्शन, भगवान का दर्शन करना है, जब से ही दर्शन होगा, क्योंकि हरि नाम ही हरि है, और हरि नाम से भगवान का रूप दूर नहीं है, या भिन्न भी नहीं है। जहां रूप है वहां नाम नहीं होगा क्या? जहां रूप है वहां नाम नहीं होगा, और जहां नाम है वहां रूप भी होगा, और जहां रूप है वहां गुण भी है, और जहां रूप है वही तो भगवान हिलते हैं डुलते हैं मुरली बजाते, तो लीला शुरू हुई। और धाम कई दूर है, भगवान जहां है वहां धाम भी है। तो ये नहीं कि ये नाम ये है फिर दूसरा है कुछ रूप और तीसरा है गुण और चौथा है लीला और पांचवा है धाम, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स और बीच में कोई दीवार खड़ी की है, ऐसी बात नहीं है। एक ही प्रभु है, उनका नाम है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं का गुण है, उन्हीं की लीला है, उन्हीं का धाम है, या वे धाम भी है, धाम बनते हैं। तो जहां तक बैठना है योगी जैसा बैठेंगे तो ध्यान में मदद होगी। हरि नाम के जप को जो ध्यान पूर्वक जप करना है उसमें मदद होगी। ये सत्वगुण की बैठक है, सत्वगुणी जो ऐसे बैठते हैं। तो रजगुण की बैठक, तमोगुण की बैठक आप जानते हो, तमोगुण की बैठक होगी। और वैसे जब हम उठते हैं तो रजगुण की प्रधानता से तीन बातें कही जा सकती। जब कोई बैठा हुआ है वो भी योगियों के लिए जैसे कहा है वो सत्वगुण की बैठक है। जब उठता है, जब करते करते जब ऐसे मन में कुछ ऐसे विचार परेशान करते हैं तो फिर बैठ के जब फिर वो उठाता है व्यक्ति को, और फिर ही इज गोइंग बैक एंड फोर्थ एंड राउंड एंड राउंड एंड क्या कुछ होता है। तो उठना मतलब उस वक्त रजगुण की प्रधानता है, और लेटना मतलब तमगुण की प्रधानता, मोटा मोटा ऐसा कहा जा सकता है। जो गुणातीत है, जो परमहंस है, या परमहंस की कुछ मात्रा अधिक कम अधिक मात्रा में प्राप्त है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लेटा है तो भी वो गुणातीत है, और उठा है तो भी गुणातीत है, गुणातीत गुणों के परे है। लेकिन जो ऐसे पहुंचे हुए नहीं है उन पर जरूर ये शरीर की जो स्थिति है, बैठना या उठना या लेटना, ये प्रभाव डालते हैं, तीन गुणों का प्रभाव उसमें आ जाता है। तो आप पढ़ लीजिए छठवा जो अध्याय है अष्टांग योग, या उसमें से कई सारी विधि विधान विधानों से हम भी लाभान्वित होंगे। उसमें से मुख्य बात यह भी है, भगवान कहते हैं यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, आपने सुना होगा यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम। भगवान ने स्वीकार किया मन कैसा है, चंचल है और मन अस्थिर है। तो यतो यामी ततो न सिंगा, यतः मतलब जाता है, जहां यतो जहां जहां मन जाता है वहां वहां से मन को क्या करो, खींचो वापिस ले आओ। तो जप के समय करना है, जप के समय करना होगा, नहीं तो फिर ध्यान पूर्वक जप नहीं होगा। मन जहां जहां जाता है, तो ये योगियों के लिए, भक्ति योगियों के लिए भी है। यतो निश्चलति मनः चंचलमस्ति ततः ततस्ततः, वहां वहां से खींच के लाओ, और नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। नियम्य नियामक, नियंत्रण करते हुए नियम्य, जब जब मन दौड़ता है कहीं तो तब तब हर वक्त एवरी टाइम अगर हम उस मन को वापिस ला सकते हैं, और आत्मन्येव वशम नये, आत्मनि आत्मा में लगा दो, या परमात्मा में लगा दो, या यहां पर जो हम जो चर्चा कर इसमें हम कह सकते भगवान के नाम में लगा दो। भगवान का नाम ही परमात्मा है, भगवान है, तो भगवान में लगा दो, पुनः लगा दो उस, तो ये एक्सरसाइज हमको करना होगा, जप के समय ध्यान पूर्वक जप करना है, जो करना ही होगा, तभी तो क्या होगा, कृष्ण प्रेम गोलोकेरो प्रेम धन, ऐसी कीमत चुकानी होगी। ये मूल्यवान है हरि नाम का धन, तो जो कमाना चाहते इस धन को कमाना चाहते हैं, मतलब जो हम जप कर रहे हैं उसका डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, वो देखना होगा ना। डिपॉजिट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पूंजी, कुछ राशि बढ़ रही है कि स्टैंड स्टिल, जैसे भी थी जितनी ऐसी है। हम दोनों घुमा तो रहे माला और बैठे तो रहते हैं दो दो घंटे, लेकिन क्या हो, क्या कुछ हो रहा है, कुछ डिपॉजिट हो रहे हैं, और इस धन से कुछ हम लाभान्वित, धन किस लिए, धन का उपयोग भी तो करना है, केवल खजाना बढ़ाना नहीं है, और प्रसन्न होना है कि वाह हमारे पास आया बैंक बैलेंस है, उपयोग करो उसका, आस्वादन करो, फिर आस्वादन कराओ, और हरि नाम धन जब प्राप्त होता है तो सारे कई सारे और लक्षण उदित होते होने चाहिए उस व्यक्ति के चरित्र में, जीवन में, आदान प्रदान में, भगवान के साथ भी आदान प्रदान। तो हमें इस प्रकार सक्रिय रहना होगा, और मन जहां जहां जाता है वहां वहां से खींचने का कार्य कौन करता है? अब क्या हाथ से पकड़ोगे क्या मन को, कोई बंदूक लेके ए वापिस आओ कैसे? मन 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 के ऊपर कोई है कि नहीं? मन के ऊपर बुद्धि है, इंद्रियों के विषयों के ऊपर इंद्रिय है, विषयों के ऊपर या ऊंचे या श्रेष्ठ इंद्रिय है, इन इंद्रियों से ऊंचा है, मन से ऊंचा है, बुद्धि से ऊंचा है परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ऐसा तृतीय अध्याय भगवान समझाए। तो बुद्धि को होमवर्क देना होगा, जब के समय बुद्धि का क्या है, का क्या है, हम लोग बैठ के जब कर, बुद्धि का क्या काम है, ये बुद्धू का काम नहीं है, जब करने में से बुद्धू का काम नहीं है, बुद्धिमान का काम है जब करना। ये बुद्धू भी कर सकता है जब वैसे, और बुद्धिमान भी कर सकता है, लेकिन वो दोनों की पूंजी धनराशि अलग अलग होगी, उनकी कमाई भी अलग अलग होगी। बुद्धू के पकड़ में नहीं आएगा ये हरिनाम, ये हरिनाम धन, बुद्धिमान के जब करते समय बुद्धिमान बुद्धिमता से कार्य करना होगा, एक्टिव रहना होगा, सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, ढीला ढाला काम से नहीं चलेगा। तो बुद्धि शार्प इंटेलिजेंस, कुशाग्र बुद्धि से देखना होगा कि जो हम नाम ले रहे हैं ये हमारी आत्मा तक पहुंच रहा है कि नहीं। कभी कभी मुझे स्मरण आता है जब माताएं जब बिल्कुल छोटे शिशु को, बालक को जब दूध पिलाती है, गोद में लिटाती है या और चम्मच से उसको पिलाने का प्रयास करती है, तो कई बार क्या होता है, बालक क्या करता है, तो माता तो उसके मुंह खोलने का, उसके ओस्ट तो चम्मच से ही ऊपर नीचे करके कैसे अंदर दूध जा सकता है प्रयास कर, लेकिन बालक और कभी अंदर आ भी गया तो थूकता है, लेकिन माता तो प्रयास करती रहती है कैसे दूध, लक्ष्य क्या है कि कैसे दूध उसके पेट में जा सकता है, उसी से तो उसकी पुष्टि होगी, लालन पालन होगा। हमारा मन भी एक छोटे बालक जैसा है, हम तो पिला रहे हैं लेकिन अंदर से मन क्या करता है, नहीं नहीं उल्टी करता है कभी, तो उस वक्त थप्पड़ भी मारनी होगी, कभी कभी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, या कुछ प्रेम से काम लेना होगा, भजहु रे मन कहना होगा, श्री नंदन नंदन अभय चरण, तो बुद्धि से हम उस मन को समझा सकते हैं। बैठे बैठे ही हमें स्वयं को प्रचार करना होगा, जब के समय तो आपके सारे विचारों को तो भगवान तो जानते हैं, तो वो सर्व साक्षी है। तो उस समय तो आपको स्वयं को प्रचार करना होगा, ए ये नहीं से ए ओ एक चुप पियो हरिनाम, एक आ गए इधर आओ इधर, बुद्धि से काम लेना होगा। ये बड़ा जब एक सीरियस बिजनेस है, बिजनेस 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 कुछ अच्छा शब्द नहीं है इस धर्म सभा में, बिजनेस की बात बिजनेस, लेकिन उससे आप समझ बिजनेस कुछ ऐसा कार्य है, गंभीर ऐसा कार्य है या व्यस्तता है, उसका गंभीर हमें समझना होगा किस उद्देश्य से हम बैठे हैं। सीरियस बिजनेस। मैं जब अब नया नया भक्त ही था बंबई में, तो जुहू में राधारास बिहारी मंदिर, तो प्रातःकाल का समय था, मेबी नॉट इवन अर्ली मॉर्निंग, तो एक व्यक्ति, बड़े व्यक्ति लाइफ मेंबर, हमारे मंदिर के अध्यक्ष को मिलना चाहते थे। तो उस लाइफ मेंबर को मैं ही मिला और मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ अध्यक्ष महोदय कहाँ है और कैसे आप से आप उनको मिल सकते हो। तो मैंने ढूंढा और देखा तो हमारे अध्यक्ष महोदय मंदिर में थे, जब कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे फलाने आजीवन सदस्य आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि टेल हिम दैट आई एम बिजी। तो बिफोर आई उनको बताने के पहले ही आजीवन सदस्य को मैं सोचने लगा, आप तो बिजी नहीं हो, यू आर नॉट बिजी, केवल आप आजीवन सदस्य को नहीं मिलना चाहते हो, इसीलिए आप इन शब्दों में उनको टालना चाहते हो, ओ आई एम बिजी आई कांट सी यू नाउ। तो यू आर जस्ट सिटिंग डाउन, तुम तो बैठ के केवल जप ही तो कर रहे हो, यू आर नॉट बिजी, तुम तो बिजी नहीं हो। ये सारे मैंने मन के विचार उनको तो नहीं बताया मेरे अध्यक्ष महोदय को, और वे अध्यक्ष थे गिरिराज, उस समय महाराज नहीं थे, वे भी ब्रह्मचारी थे और हम भी ब्रह्मचारी थे, उन दोनों गुरु भाई भी थे। तो फिर मैंने भविष्य में सोचने लगा कि सचमुच वे कितने व्यस्त थे हरि नाम के साथ वगैरह, वो तो वे ही जानते थे, देख तो रहे थे कि वो मंदिर में बैठ के भगवान के समक्ष गंभीरता से जब तो कर रहे थे, वाज बिजी। लेकिन मैंने या ज्यादातर हम लोग नहीं सोचते कि ये भी कोई बिजनेस है, ये भी कोई तो कोई जब करते हम ऐसे ही जाते हैं उसको उसका प्रणाम करते हुए, या मैं आई डिस्टर्ब यू ऐसा कुछ कहना है, मैं कह सकता हूं कि ऐसा अनुमति लिए बिना ही, क्योंकि वो बिजी है भगवान के साथ, बिजी है ऑलरेडी, उनका कोई चल रहा है संवाद, तो इसमें विघ्न डालना या उनका ध्यान और किसी बातों में आकर्षित करना, तो ये तो ऑफेंस हुआ, ये तो अपराध हुआ। भगवान के साथ जिनका संवाद हो रहा है, भगवान के साथ जो बैठे हैं, तो हम ऐसे धड़ाम करके जाए और कभी सोचे भी नहीं कि ये कुछ कार्य में व्यस्त है कि नहीं, तो हम लोग ऐसे ही कुछ कहते भी हैं और चले भी जाते हैं। और तो ध्यान पूर्वक जप की तैयारी हमें, तो ध्यान जप करते समय भी तो हमें कई सावधानियां बरतनी है, किंतु कल के जप की तैयारी हमें आज से प्रारंभ करनी होगी, या कुछ दिन पहले प्रारंभ करनी होगी तैयारी, कल से मुझे जप करना है। तो अभी जो मैं जो कुछ कृत्य कर रहा हूं, कहीं आ रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो इसका क्या प्रभाव असर पड़ने वाला है मेरे कल के जप के ऊपर। कल मुझे ध्यान पूर्वक जप करना है, किंतु कल जप करते समय क्या आज की ये बात मैं जो कुछ कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, खा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये मुझे मदद करेगी कि मुझे ये विघ्न बनेगी? अगर कोई मदद करने वाली अनुकूल बात है तो उसका स्वीकार हो, और कोई प्रतिकूल बात है तो प्रतिकूल्यश वर्जनम अनुकूल्यश संकल्प। जो भी अनुकूल है तो जब करते समय जब बैठे ही है तो उस समय भी कुछ अनुकूल है कुछ प्रतिकूल बातें हैं उनका विचार होना चाहिए, और अनुकूल बातों का स्वीकार, प्रतिकूल बात को तो अस्वीकार त्यागना। लेकिन ये बातें तो हमें द डे बिफोर द नाइट बिफोर भी सोचना होगा कि कल जब मुझे ध्यान पूर्वक जप करने का मेरा समय होगा तो ये बात मैं जो कर रहा हूँ ये कृत्य मुझे मदद करने वाला है, इससे पुष्टि होगी, पोषण होगा कि शोषण होगा मेरा इस कृत्य से। तो जब बैठे हैं तभी चिंता ध्यान पूर्वक जप की तो होनी चाहिए, किंतु पहले से सेटिंग द सीन वो पहले से करना होगा ताकि हम कल जब जप करेंगे ध्यान पूर्वक जप कर सकते हैं। और फिर कई कंसिडरेशंस है, अनुकूल प्रतिकूल समय का है, कौन सा समय अनुकूल है, तो ब्रह्म मुहूर्त अनुकूल है, प्रातःकाल अनुकूल है। प्रातःकाल अनुकूल क्यों है? क्योंकि प्रातःकाल में सत्वगुण की प्रधानता होती है, दिन में रजगुण है, रात्रि को तमगुण है, ऐसे सब इन तीन गुणों के कंट्रोल में है हर बात। जैसे हमने कहा बैठना तो सत्वगुण, उठना तो रजगुण, लेटना तो तमगुण, ऐसी व्यवस्था है। तो जो 24 घंटे का जो कालावधि है, आप परमहंस या गुणातीत नहीं हो, ट्रांसेंडेंटलिस्ट अब तक नहीं बने हो, तो जरूर इस काल का प्रभाव आप पर होगा। तो प्रातः काल का एक प्रकार का प्रभाव है, तो दिन में दूसरा है, तो रात्रि को तीसरा है। तो द गुडनेस इज क्लोजेस्ट, जो सत्व गुण है वो शुद्ध सत्व के थोड़ा अधिक करीब है, मतलब कम बंधनकारी है। तो ये समय का हुआ, तो फिर स्थान का भी, आपका आसन जो है कैसे बैठना, थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन आसन मतलब जहां हम लोग बैठे हैं वही आसन नहीं है, हमारे सारा आसन बन जाता है। किस परिस्थिति में हम बैठे हैं, आसन जहां बैठे हैं 2x2 जो भी फीट का कोई, उतना ही आसन नहीं है। और कौन कौन लोग है, व्यक्ति है, वो भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कुछ लोग, कुछ व्यक्ति जप के समय हमको प्रोत्साहित करते हैं, गंभीरता पूर्वक जप करते हैं, उनको देख के ही लगता हम कैसे, हम कब ऐसे जप कर पाएंगे, इतना ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। तो दूसरे और भी होते हैं जो या तो सोते रहते हैं, तो उनको देख के दया आती है, या और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हुआ जप के समय ही बात करना, माला तो है हाथ में लेकिन वाचाल होते हैं, उनको ऐसा वेगम, वाचो वेगम जो है, वाचा उनकी बड़ी, बात करना चाहते जप के समय, तो ऐसे व्यक्तियों का संग जप के समय उस आसन उस परिस्थिति में अनुकूल नहीं हो सकता है। हम अगर उनकी कुछ मदद कर सकते हैं ऐसे ना करते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र में 16 शब्द है, इस पूरे मंत्र को सुनना होगा, महामंत्र को सुनना होगा। हम पूरे मंत्र को, ऐसा हो सकता है हम पूरे मंत्र को एक ही बार सुन लेते हैं, ओ एक सुन लिया महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण एक मंत्र सुन लिया, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम एक दूसरा मंत्र सुन लिया। यह हो सकता है कि हम इतना तो पता चला कि हम पिछले 2 घंटों से जप कर रहे थे, पिछले 2 घंटों से क्या किया हमने, जप किया, इतना ध्यान रह सकता है यार। और फिर हमने 16 माला की या 12 माला की या एक माला हुई और एक मंत्र कहा, नहीं, हमको और फोकस होना होगा। क्या सुनना होगा हमें? हो रे सुनना होगा, और दूसरा हरे सुनना, हरे कृष्ण सुनना होगा। और हरे भी सुन लिया, कृष्ण भी सुन लिया, फिर दूसरा हरे सुन लिया, दूसरा कृष्ण सुन लिया, फिर कृष्ण कृष्ण सुना हमने, हरे हरे हमने सुना। या तो आधा ही मंत्र हुआ, आधा तो मंत्र सुन लिया, आधा मंत्र सुना, फिर हरे हरे भी सुनना, हरे राम राम भी सुनना, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम पूरा मंत्र ही ऐसा सुन लेते हैं तो कुछ होता कि छोटा ही मंत्र है, लेकिन ध्यान पूर्वक आप जब जप करोगे तो वैसे पहले हरे से शुरुआत करके जो 16वां जो हरे है तो आप महसूस करो, लॉन्ग मंत्र, काफी लंबा मंत्र है ये। तो उदाहरण भक्त भी देते हैं, फोकस या एक अग्र एकाग्रता, एक अग्रता, अग्र मतलब अग्र भाग, आगे का एक अग्र। तो द्रोणाचार्य ने कहा शिष्य हो क्या करो, उन्होंने पंछी था लेकिन भक्तों को अच्छा नहीं लगता उदाहरण पंछी का, पंछी को क्या करो, बांध चलाओ और उसकी आंख फोड़ो फोड़ो, क्या कह सकते, फल कह सकते, ओ फल है ना, ओ फल, उस फल को तुम लोग निशाना बनाओ या तोड़ सकते हो। वो फल का क्या है, क्या कहते हो स्टेम को, क्या कहते हो, वो तो मराठी हुआ, वो मैं जानता हूँ, डंडी, ये तो प्रैक्टिकल कुछ ऐसा शब्द कहा आपने, लेकिन वो टहनी, वो तो उससे दूसरा, टहनी तो दूसरी होती है, तना, तना तो ट्रंक ऑफ द ट्री को तना कहते हैं, समझ रहे ना। तो गलितम फलम जो होता है टूटता है तो जिससे वो जुड़ा रहता है, तो हिंदी भाषा भी सब फेल हो गए anyway, तो अगर द्रोणाचार्य ने कहा कि उस डेट को तुम बांध चलाओ, तो फिर पूछा, जब एक एक करके जब उठ रहे थे धनुष बाण लेके, तो द्रोणाचार्य वह क्या देख रहे हो, उनका मैं तो आकाश और ये सारा वन है, कई सारे पेड़ है, पहाड़िया भी पीछे है इन द बैकग्राउंड, तो बैठ जा बैठ जा सिट डाउन। दूसरे उठे और उन्होंने क्या क्या देख रहे हो बता दो, आकाश देखते हो, नहीं पहाड़ भी नहीं, लेकिन कई सारे पेड़ तो देख रहा हूं, कई सारे पेड़, हटो पीछे जाओ, अब तुम उठो, क्या क्या देख रहे हो, मैं एक पेड़ दे, एक पेड़ और, पेड़ नहीं और पहाड़ नहीं आकाश नहीं, मैं पेड़ देख रहा हूं। उसे मदद नहीं होगी, वो देठ है, मुझे लक्ष्य बनाना है, या आम कहो फल कहो, तो मतलब वो आकाश देख रहा है पहाड़ देख रहा है, तो कैसे हो फल को कैसे निशाना बना सकता है, बांध से कैसे उसको छेद कर सकता है। तो और उठे तो कहो मैं पेड़ नहीं देख रहा हूं, एक शाखा ही देख रहा हूं, उसमें कई सारे फल है, ओ नहीं तुम भी नहीं, के नेक्स्ट तुम क्या देख रहे हो, और कई सारे फल है उस शाखा में, सिट डाउन, तुम क्या देख रहे हो, बस आकाश नहीं पहाड़ नहीं वृक्ष अन्य वृक्ष नहीं, ये सारा वृक्ष भी नहीं शाखा भी नहीं अन्य फल भी नहीं, बस एक फल देख रहा हूं जिसको आपने कहा कि निशाना बनाओ, उसको लक्ष्य बना दो, भेदन करो उसे, उसको देख रहा हूं। तो तब अगर वो छोड़ेंगे उस बाण को तो कहां पहुंचेगा जो लक्ष्य बनाया है, फल को। तो हम इस्कॉन में एक शब्द है वेस्टर्न, स्पेस्ड आउट, स्पेस्ड आउट, ये मतलब इस स्पेस्ड आउट, मतलब वो ही इज एवरीवेयर। उनका मन तो कहा यहाँ वहाँ स्थिर नहीं है, सब जगह है, स्पेस्ड आउट, स्पेस में, स्पेस मतलब आकाश। तो जब जप करने के लिए बैठे हैं तो हमें सारा ब्रह्मांड और सारा संसार और सारी पृथ्वी और सारे देश और सारा भारत देश और सारा महाराष्ट्र, सारा पुणे और सारी गलियां पुणे की, और फिर हमारा बंगलो और बाउंड्रीज, उसमें जो जो है और हम बैठे हैं जिस कक्ष में, क्या करना होगा? उसको एलिमिनेट करना होगा। ये भी नहीं ध्यान के समय, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ध्यान के समय बस अगर ये शरीर से बाहर और कुछ सोचे ही नहीं है, शरीर के बाहर वाली कोई वस्तु को अगर हम सोच नहीं सकते, जब प्रचार के लिए, सेवा के लिए जब भी समय आएगा सोचने का तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जब के समय कोई आवश्यकता तो नहीं है। सर्वत्र है इष्ट देवी स्फूर्ति, क्या उसकी शुरुआत कैसी है? स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देवी स्फूर्ति। ये वैसे बड़ी ऊंची अवस्था है किंतु हम उसको सुन तो सकते, समझ तो सकते हैं, तो फिर कुछ हमारे जीवन में उसका हम उपयोग कर सकते थोड़ा कुछ, न कल तो नहीं कर सकते, लेकिन तो इसमें ये भाव दिया है, ये चैतन्य चरितामृत का वचन है, शायद चैतन्य महाप्रभु ही कहे हैं रामानंद राय के संवाद में, मुझे पूरा स्मरण नहीं है। तो कहते कि स्थावर जंगम देखी, स्थावर समझते हैं आप, स्थावर हिमालय, स्थावरा नाम हिमालय, स्थावर जंगम, जंगम मतलब चलायमान। प्रॉपर्टी के भी दो प्रकार होते हैं, स्थावर फिक्स्ड एसेट्स और फिर मूवेबल। तो कोई व्यक्ति जा रहा है स्थावर जंगम न देखी, लेकिन उनको देख नहीं रहा, वो व्यक्ति वैसे साधारण नहीं है, सुखदेव गोस्वामी जैसा है या उद्धव जैसा है, ऐसे महान भक्त है, साक्षात्कारी पुरुष है। तो उनके संबंध में कहा कि स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, स्थावर जंगम को देखते हुए भी इन जनरल देख तो लिया, लेकिन वो फोकस नहीं करते हैं, फिर एक एक आइटम को जब आवश्यकता नहीं है, इट्स नॉट योर बिजनेस, नाइदर इट इज योर टाइम टू थिंक, उनके संबंध में अधिक गहराई में जाके गोइंग इनटू द डिटेल्स, ताकि उसका आपको रूप और गंध और स्पर्श करने का समय नहीं है, आपने देख तो लिया किंतु उसको ना देखे तार मूर्ति, मतलब ज्यादा गहराई से नहीं देखा, ध्यान से नहीं देखा, देख लिया। बुद्धदेव बैठे थे कहीं पर और फिर एक व्यक्ति ने पूछा, आपने ऐसे ऐसे स्त्री को यहां से जाते हुए देखा? हाँ, कई रास्ता था, कोई पगडंडी रास्ता होगा। तो बुद्धदेव जी का उत्तर था, हाँ किसी को जाते हुए तो देखा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो स्त्री थी या पुरुष। हाँ कोई गया जरूर, डोंट आस्क मी वो स्त्री थी या पुरुष था, स्त्री थी तो कौन से रंग की साड़ी पहनी थी और क्या क्या था, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। ओके ओके, स्त्री तो थी है, लेकिन फिर आगे मुझे मत पूछना, मैंने देखा नहीं, मैंने देखा ही नहीं है, उस दृष्टि से मैंने देखा ही नहीं, तो मेरे पास उसके उत्तर भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, या मैंने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मूर्ति या ये रूप या ये जो भी है। तो सावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, क्यों ये कब संभव है, क्यों संभव है, किस मन की स्थिति में संभव है? सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति, अपने इष्ट देव की स्फूर्ति जब सर्वत्र सब अवस्था में होती है सब काल में, तो फिर व्यक्ति का मन कहीं जा रहा है और उस वस्तु को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, तो कार तो है ऐसा कोई देख लिया जा रहे हैं व्यक्ति, तो एक्सीडेंट नहीं हो, इसलिए कार तो देखी, कार तो है इसे टालने के लिए फिर इधर से बगल से चले। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसने कार भी देखी और कार को देखते ही रुक गया, ओ बाप रे वाह अठवाड़े कार, आओ क्या कार, कार हो तो बस, और वो कार को खोल के देख रहा है, कार की मानो प्रदक्षिणा कर रहा है, हो सकता है कार को लोग चुन सकते हैं, क्या बड़े कार, देखो कितने इन्वॉल्व हो गए हो। दूसरे व्यक्ति ने भी कार देखी, वो जप कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, हम जैसा कोई भक्त है या फिर उनसे ऊंचे महात्मा है, तो उन्होंने मूर्ति तो मतलब रूप तो देखा, स्थावर जंगम वस्तुएं तो देखी, लेकिन उसकी मूर्ति को, उसके सारे रूप रंग को या स्वाद को नहीं देखा, उसमें नहीं इन्वॉल्व हुए, तो हुआ तो फिर वही, तो कल के जब की तैयारी आज करनी है, तो फिर आज हमें बड़े सावधानी से जो भी देखना है, जो भी सूंघना है, जो भी करना है देखना होगा, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, या उस समय भी जब ही कर रहे भक्ति कर रहे, तो उस समय जो भी है तो उसको कितना उसमें इन्वॉल्व होना है, कितने करीब जाना है, कितना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, किससे कब, ये सारे कैलकुलेशंस है, ये सारा बुद्धि का काम है। जैसे योगियों के लिए भगवान का है, योगी क्या करता है, योगी की तुलना कुर्म या क्या कहते हैं कछुए के साथ भगवान ने की है योगी की तुलना। तो कछुआ जब तालाब में जहां पर है चलता है, तो कोई विघ्न है कोई खतरा है, तो क्या करता है, अपने जो उसके हाथ पैर जो है अंदर सिकुड़ लेता है, अंदर करता है, कि उसकी जो पीठ है वो तो कठिन होती है, तो उसके लिए वो डिफेंस के लिए ऐसी व्यवस्था उसके शरीर में इस भगवान ने की है, तो अपनी रक्षा के लिए झट से डेंजर का खतरा पता चलते झट से ऐसे सब समेट लेगा। तो योगी भी या भक्ति योगियों को भी जब वे देखेंगे आओ ये तो प्रतिकूल बात है, ये झट से वहां से पीछे हटेंगे, पीछे मूड कर सकते हैं, या अगर उनमें सामर्थ्य है तो उस परिस्थिति का उसमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि वहां भी कृष्ण भावना की स्थापना हो, ऐसी अगर क्षमता रखता है व्यक्ति, तो वो परिवर्तन लाएगा, कुछ क्रांति करेगा, वहां कृष्ण भावना की स्थापना करेगा उस परिस्थिति में, उस व्यक्ति के दिमाग में या जो भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक गौड़ीय वैष्णव थे, क्या तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, तो एक समय वो बीमार थे, लेकिन नाम में उनकी बड़ी रुचि थी, प्रभु के नामों का सदैव उच्चारण करते हैं। तो डॉक्टर आए और परीक्षण कर रहे थे, डायग्नोसिस, तो स्टेथोस्कोप लेके आते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं ना जो, तो वो देख रहे थे जांच पड़ताल। तो उन्होंने जब उनके वक्षस्थल पर अपना रखा वो राउंड पार्ट, तो सुनते भी है डॉक्टर, अंदर उनको पता चलता है धड़कन या जो भी टिक टिक से, फिर मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो हुआ, तो जब वो सीने पर वक्षस्थल पर जब वो उनका स्टेथोस्कोप रखा था, तो डॉक्टर्स ने उनके मुख की ओर देखा, वो मरीज वैष्णव भक्त जो थे उनका मुख तो बंद था, लेकिन वो डॉक्टर सुन रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। डॉक्टर हैरान हो गए, क्या हो? तब उस महात्मा की आत्मा ही बोल रही थी, मुख तो नहीं बोल रहा था, मुख तो बंद था, लेकिन इस डॉक्टर ने सारा महामंत्र सुना। उनके मशीन जब उन्होंने लगाई उनके नियर द हार्ट, तो ये इसकी चर्चा हुई या इस डॉक्टर ने कहा, और फिर अब तक वो बात की चर्चा चली रही है आज भी। तो जो जप करना है, जप करता तो अल्टीमेटली अंततो गत्वा, जप जप करने वाला तो मुख नहीं है, मुख तो एक स्पीकर है, बॉक्स स्पीकर। आज सायंकाल को प्रवचन होगा, स्पीकर होंगे मिस्टर सोनी या मिस्टर बोस या मिस्टर आहूजा स्पीकर आज के, क्योंकि वो बॉक्स जो वो बोलेगा कि आहूजा का बॉक्स तो पड़ा हुआ है, वो बोलेगा या और किसी कंपनी का स्पीकर है बॉक्स छोटे या मोटे। तो जब तक वो स्पीकर के पीछे से माइक से कोई बोलेगा नहीं, तब तक वो स्पीकर से आवाज नहीं आना है। तो हमारा मुख भी क्या है? मुख स्पीकर है या बॉक्स स्पीकर है। उसके पीछे अगर आत्मा नहीं बोलेगा तो आवाज भी नहीं आनी। तो आत्मा इस प्रकार, ये सारा ज्ञान भी, गीता का ज्ञान अध्ययन, ये सब जप में मदद करने वाली बातें हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा भी व्यक्ति है, आत्मा का भी अपना मुख है। आत्मा तभी बोलेगी जो आत्मा का मुख है। आत्मा बोलती है तो सुनता कौन? कान कौन सुनता है? सुनने वाला भी परमात्मा तो सुनता है ही, लेकिन आत्मा सुनेगा? कोई माता ऊपर वाला कहो तो सुनता है ऊपर वाला। और ये बड़ा रहस्यमय बात भी है, हम जब जब करते हैं तो कौन कौन सुनते, कौन कौन है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, कौन सुनता है? सुनने वाला कौन है? एक तो आत्मा सुनता है, और कोई सुनता है? भगवान भी तो सुनना होगा, और भगवान तो सुनते ही है, वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वो सुनते हैं। लेकिन सुनने सुनने में फिर अंतर है, भगवान के सुनने सुनने में अंतर है। कोई बात भगवान सुनेंगे और इस रूटीन, उनको कुछ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर ऐसी कोई पुकार है जो प्रभु को पुकार रही है, जैसे द्रौपदी की पुकार, या तो फिर क्या होता है, वो ध्वनि, वो शब्द, वो पुकार भगवान को, भगवान का ध्यान आकर्षित करती है। भगवान सोचने लगते हैं, सुनते तो है ही, आप उनको सुनाओगे, नहीं सुना रहा, जो हम लोग कुछ और भी बातें प्रजल भी कर रहे तो भगवान नहीं सुनते हैं क्या? केवल हरि नाम करते तभी सुनते हैं भगवान, और हम प्रजल्प करते तभी नहीं सुनते? दोनों ही बातों को सुनते हैं, और सुन के भगवान फिर अपना, उनका जो स्ट्रेटजी है हमारे संबंध में, भगवान का जो भी धोरण मराठी में कहते हैं, उसको उसको निर्धारित करते हैं, इसके साथ कैसे व्यवहार करना, ये है कौन? तो हमने ध्यान पूर्वक जप किया, मतलब क्या किया, उसको सुना, हरे को सुना, कृष्ण को सुना ध्यान पूर्वक, कृष्ण कृष्ण, और उसके साथ फिर भाव भी आ जाएंगे, क्योंकि ध्यान पूर्वक जब करेंगे तो फिर हम उसको लागू कर सकते हैं। ये जो श्रद्धा से क्या कहां तक, प्रेम तक, तो ध्यान पूर्वक जब तो वैसे तभी संभव है जब अनर्थ निवृत्ति होगी। तो ये तो चंचलम मनः स्थिरम, ये जो है ये सब अनर्थों से मुक्त होने के लिए है। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, तो जप करना ये भजन क्रिया तो हमने सीखी, कुछ श्रद्धा है, संतों के पास गए, हरे कृष्ण भक्तों के पास गए, साधु संग किया, महात्म्य सुना हरि नाम का, भजन क्रिया उन्होंने समझाई, फिर हम अपने घर लौटे या जहां भी हम हैं, कभी भजन क्रिया करने लगे, अपनाया हमने, अमल प्रारंभ किया, तो फिर क्या होना चाहिए नेक्स्ट? अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति जब हुई तो फिर उसी हरि नाम में निष्ठा, उसी हरि नाम में रुचि, उसी हरि नाम में आसक्ति, उसी हरि नाम के उच्चारण के साथ भावों का उदित होना, और उसी हरि नाम को हम कृष्ण प्रेम, प्रेम के रूप में प्रभु ही है, उनका प्रेम प्राप्त हुआ। ये सारा का सारा जो सीढ़ी है, सोपान है, ये हमारे हरि नाम जप को भी लागू होता ही है। तो जितने हम अनर्थों से मुक्त होंगे उतने ही हम अधिक ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे। जितने भी हम अनर्थों को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ध्यान घटता जाएगा। और हमने इतने अनर्थ बढ़ाए कि कोई सीमा ही नहीं रही, तो ये भी हो सकता है कि हमसे हरिनाम फिर होगा ही नहीं, हमने इतने अपराध किए, इतने अनर्थ, तो मुख से नाम निकलना बंद होगा अपराध करने से, और उसमें वैष्णव अपराध करने से, जैसे उस कौन थे सौरभी सौभरी, यस, तो सौभरी मुनि उन्होंने अपराध किया, गरुड़ वैष्णव के चरणों में अपराध किया, ऐ तुम पुनः नहीं आ सकते यहाँ इस क्षेत्र में। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आचार्य भी, उनका तो कोई दोष नहीं था, उन्होंने मछली खाई, पक्षी है तो मछली खाई, क्या क्या बिगाड़ा, पत्रम पुष्पम फलम तो ये उनके लिए नहीं है, मछली खाई खाई, लेकिन सौभरी मुनि ने सारी सभा बुलाई, मछलियों की सभा, और ऐसा सभी के समक्ष, क्यों किया ऐसा, क्यों खाया, तुम्हारे लीडर को खाया। तो हुआ क्या, ये जब पहले तो ध्यान लगता था उनका, पानी में ही रहते थे वो, कालीय दह में ही रहते थे, कालीय वहां पहुंचने के पहले, लेकिन जब उन्होंने वैष्णव अपराध किया, गरुड़ को शाप दिया, जब तब क्या हुआ, वही सौभरी मुनि का ध्यान अब नहीं लगने लगा, पहले ध्यान लगता था, अब क्या होने लगा, उनका ध्यान और बातों में, और उसी कालिया दह तालाब में जो मछलियां, और मछली भी कोई पुरुष मछली, स्त्री मछली, और उनका भी मिलन होता है, उनकी ओर उनका ध्यान जाने लगा, उनके संगम समागम को वो देखने लगे, और वैसे ही काम के वासना उत्पन्न होने लगी उनके मन में, ध्यान कहां से, ध्यान हट गया, घट गया, और यहां तक कि वे काली अदा को हुए, उनको वो छोड़ना पड़ा, और मानधाता नाम के राजा के दरबार में पहुंचे वे, और उनकी पुत्रिया थी, कितनी 50 एक थी 50, तो इतनी काम वासना उत्पन्न हुई, तो योगी बन के वो ध्यान तो कर रहे थे, किंतु अब उनका इतना पतन हुआ, इतनी इच्छाएं जागृत हुई, प्रबल हुई, उसे वशीभूत हुए, और केवल एक स्त्री से ही नहीं 50 उसकी स्त्रियां बनी। तो ये उदाहरण देते हैं कि कैसे नाम या नाम अपराध या वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति में विघ्न ही नहीं, भक्ति रुक सकती है, हमारे मुख से ये नाम निकलना कठिन हो सकता है। तो जब हम जप करते हैं तो जप करता वैसे आत्मा ही है, और आत्मा जब जप करता है तो आत्मा भी उस जप को, नाम को सुनता है, साथ ही साथ भगवान भी सुनते हैं, तो फिर कैसे भाव है वो जप करते समय किन भावों के साथ, कैसे विचारों के साथ आप उच्चारण कर रहे हो, उस पर फिर निर्भर होगा भगवान को आप कितने आकर्षित कर सकते हो अपनी ओर। आप भी खींचे जा रहे हो, यह कर्षति स कृष्ण, वे भी आपको आकर्षित कर रहे हैं, आप भी उनको आकर्षित कर रहे हो, वे भी आपकी ओर दौड़ रहे हैं, आप भी उनकी ओर दौड़ रहे हो, और फिर मिलन होगा, कंपटीशन भी होगी, कौन पहले कौन अधिक तेजी से दौड़ के आलिंगन देता है। और इस प्रकार के भाव भी जप के समय आ सकते हैं, प्रभु मिलन की आशा, क्यों नहीं क्यों नहीं, क्या किया अपराध हमने, इस प्रकार के विचार भी आ सकते हैं, भाव आ सकते हैं। फिर भगवान के रूप का रूप समक्ष आ सकता है, भगवान की गुणों का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण, तो नाम सही, जब नाम शुद्ध होगा, अपराध शून्य होइया लहो कृष्ण नाम, तो अपराध शून्य जब नाम जप होगा जो लक्ष्य है, तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं तीन अवस्था है, अपराध, अपराध पूर्ण जप, फुल फ्लेज अपराध, अपराध ही अपराध चल रहे, जप भी चल रहा है और अपराध भी चल रहे हैं, लेकिन ये सारी सावधानियां बरतेंगे हम, समझेंगे कौन से अपराध है, उसको टालने का हर समय रिव्यू एंड कुछ डिसीजन, ये नहीं करना, ये करेंगे, ये चलना होगा। जब करते समय भी अभ्यास ही कौनते ही। तो ऐसे करते करते हम जब अनर्थों से भी मुक्त होंगे, या जितने मुक्त होंगे उतने ही फिर आगे ऊपर आसक्ति, ये रुचि, नामे रुचि जीवे दया, वैष्णव सेवन, ये भी शुद्ध नाम जप का ही ये फल है। शुद्ध नाम जप करने से ही नाम में और रुचि आएगी, और वैष्णवों की सेवा करने का भाव उदित होगा, और क्या नामे रुचि जीवे दया, और जो श्रद्धालु लोग हैं उनमें दया, मदद करने का विचार आएगा, हमें भी गुण प्रकट होंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिस व्यक्ति की भक्ति है, और भक्ति भी किसकी भक्ति, भगवती भगवान की, भगवान में भक्ति, देवता की भक्ति तो उसको भक्ति कहा भी नहीं है, भक्ति मतलब कृष्ण की, भगवान की भक्ति को भक्ति, देवता की भक्ति तो भुक्ति है, भुक्ति, भोग के साधन प्राप्त होते हैं, भुक्ति, एक भुक्ति, एक मुक्ति, एक सिद्धि, ऐसे फिर भी एक भक्ति, तो भक्ति मतलब भगवान की भक्ति, नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो ऐसी जो भक्ति करते हैं, क्या हम लोग बात कर रहे थे, ओके, तो भक्ति अकिंचना भक्ति है, तो वह ऐसे भक्त में तत्रै समासते गुणै समासते सुरः, सुरों के देवताओं के गुण उस व्यक्ति में आएंगे जो भक्ति कर रहे, कैसी भक्ति, अकिंचना, निष्किंचन, निष्काम, या फिर वही ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्व, भाव पूर्वक जो जप कर रहे हैं, जब भी करे, जब करना ही भक्ति है। तो हराव अभक्त शकुतो महत गुणः, किंतु जो प्रभु का भक्त ही नहीं है उसमें ये अच्छे अच्छे गुण कहां से आएंगे, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो भक्ति करते करते ही भक्त में, भक्त सद्गुणों से संपन्न होता है, समालंकृत होता है, वो गुण ही उसके आभूषण बन जाते हैं। तो नाम जप कर रहा है किंतु गुणों से संपन्न नहीं हो रहा है, समालंकृत नहीं हो रहा है, तो इट्स अ क्वेश्चन कि फिर हो क्या, क्यों नहीं हो, मतलब अपराध से स्वयं को मुक्त नहीं कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, या 16 माला का जप भी नहीं कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों की बात है। जो विधि है प्रभुपाद हमको दिए इस काल में 16 माला का जप, तो ये संख्या पूर्वक नाम गान ननति भी, संख्या भी है और उसकी गुण भी है, क्वालिटी भी है, अपराध रहित जप और संख्या पूर्वक जप। तो जप तो करते रहना चाहिए, हमसे अपराध होते, इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा हमसे अपराध है इसलिए हमने जप ही बंद कर दिया। अपराध होता है, उसे अच्छा है कि जप ही नहीं करे, अपराध नहीं होगा फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो जप को छोड़ना नहीं चाहिए, जप करते रहे और इन अपराधों को हटाते मिटाते रहे। तो ये चर्चा तो कई सत्रों में हो सकती है, इस काल में समय समय पर स्थान स्थान पर ये जप रिट्रीट सेमिनार चलते हैं, जप रिफॉर्म बुक्स भी प्रकाशित हुई है ताकि जप में सुधार हो, और जप में सुधार है तो हम सुधरेंगे, हम अच्छे भक्त बनेंगे, उसमें समाज का भी सुधार होगा, हमारे संपर्क में जो भी आएंगे उनका भी सुधार होगा, सभी का कल्याण होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।